शांति। राष्ट्रीय सेवा योजना का ये लक्ष्य गीत है, उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम खुद भी सजे और वसुंधरा को भी सवार दे। भारत की जो भी यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय थे 1969 में, सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम सब में इंट्रोड्यूस किया गया और इसके तहत लक्ष्य था एक ही, सेवा। जो भी विद्यार्थी है, जो भी तरुण है, वो सेवाएं करे, मेडिकल कैंप करे, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, रोड शोज करे, स्वच्छता अभियान करे। क्लीनलीनेस सबसे प्रथम था उसमें, डिफॉरेस्टेशन को रोके, जंगल तोड़, और इस तरह से जो जो जहां जहां क्षेत्र है उस एरिया में सेवा करें, ताकि युवाओं के मन में सेवा भाव प्रकट हुए। हम उठे उठेगा जग हमारे संग साथियों, हम बड़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, जमी पे आसमां को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को पाटते चले, ज्ञान का प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान का प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारिया सदा रहे, हरे भरे वनों की शाल ओढ़ती रहे धरा, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलिया बने नशूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह दे, भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे सवार दे। सेवा भाव जितना अखंड होगा, अपने आप सब कुछ ठीक होगा। कोई ये सोचे कि पहले मैं अपनी अवस्था ठीक करता हूं, बाद में सेवा करूंगा, तो बाबा ने क्या कहा? हरी झंडी दे दी। बाबा ने कहा नहीं, जो अवस्था है, जैसी अवस्था हो, जहां पर भी हो, जो भी स्टेज हो, उसी स्टेज में बैठकर रहकर क्या करना है? सेवा करना है। तो क्या हो जाएगा? उन्नति किसमें समाई हुई है? दूसरों के कल्याण में स्व उन्नति समाई है। स्टेज बनाने का आधार क्या है? सेवा। कितनी नई और कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है कि रुको नहीं स्टेज के लिए, सेवा करते करते ही स्टेज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बाप बीच में क्या कर देगा? शक्तियां भर देगा, मदद कर देगा। इसके लिए सेवाएं चालू रखो, सेवाओं को रोकना नहीं है। या फिर ये कहे, कोई ये समझता है कि इस ब्राह्मण जीवन में मेरे से बहुत भूले हुई है, विकर्म हुए हैं, पाप हुए हैं, श्रीमत का उल्लंघन हुआ है, मैं पहले पश्चाताप कर लेता हूं, थोड़ा योग का चार्ट अपना बढ़ाता हूं, फिर सेवा में उतरूंगा, क्योंकि सेवा में ऐसे कैसे करें। वास्तव में देखा जाए तो सेवा पश्चाताप का साधन है, सेवा ही प्रायश्चित है, क्योंकि सेवाओं से क्या होगा, दुआएं मिलेगी। आज हम जो दूसरा भाग है मुरली का, उसकी चर्चा करेंगे, विदेशियों से मुलाकात पार्टी एक और पार्टी दो। मुख्य मुरली में बाबा ने कहा है, दुआएं लो तो क्या हो जाएगा, जिसकी तुम सेवा करोगे वो तुम्हारा संबंधी, वो तुम्हारा भक्त या तो प्रजा बन जाएगी कभी ना कभी, वो आत्मा। इसके लिए रुकना नहीं है कि मेरी स्टेज अच्छी हो जाए फिर मैं सेवा करूंगा। जो स्टेज में है, जैसी स्टेज में है, अपने आप को सेवाओं में झोंक दो, सेवाओं में लगा दो अपने आप, अपने आप स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। और कोई ये सोचे केवल कि मैं सेवा ना करूं और केवल तपस्या करूं, एक एक रोटी जो मधुबन में तोड़ी है उसका हिसाब चुकाना होगा। मधुबन की रोटी इतनी सस्ती नहीं है, एक एक टुकड़े का हिसाब होगा। सेवा करते रहो करते रहो। जैसे हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य आत्मा प्राणी योनियों में जाती है, वैसे ही बौद्ध धर्म में भी मान्यता है कि बहुत सारी प्राणी योनियों में आत्मा भटकती है और फिर मनुष्य योनियों में आती है। ऐसी एक जातक कथा है, जातक कथा जिसको कहा जाता है, बहुत सारी जातक कथा है। वो कहानी एक बोधिसत्व आत्मा की है, जिसके लिए कहा जाता है कि किसी जन्म में वो एक खरगोश था। दंत कथाएं बनाई हैं लोगों ने, परंतु गहरे राज उनमें समाये हुए। इस जातक कथा में बताया गया कि एक बोधिसत्व, बहुत बोधिसत्व अर्थात बुद्ध जैसी अवस्था जिसने पाई है उसे बोधिसत्व कहा जाता है। दो भाग है बुद्धिज्म में, एक तो वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम बुद्ध जैसा बनेंगे, उनके शिष्य, उनके फॉलोअर्स या आने वाले सभी लोग। दूसरे थे, उन्होंने कहा यह हमारे बस का काम नहीं है, हम उसकी मंदिर में पूजा करेंगे, मंदिर बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे और पूजा करेंगे, ये ठीक है, इसमें संसार भी भोगा जा सकता है और भक्ति भी हो सकती है, तो यहां भक्ति मार्ग चालू कर दिया। पर दूसरे जो थे उन्होंने वो किया जो बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भव, हे आनंद जैसे स्वयं का प्रकाश स्वयं बन, ना मेरी मूर्ति बनाना, ना मेरी पूजा करना, ना कभी मेरी शरण में आना। पर ये जो दूसरे थे इन्होंने सीधा विरोध किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने कहा मेरी शरण मत आओ, उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, उन्होंने कहा कि कोई संग नहीं बनाना, धम्मम शरणम गच्छामि, उन्होंने कहा मेरी मूर्ति तो कभी मत बनाना, सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी है संसार में, मूर्ति है बुद्ध की, एक मंदिर है जिसमें 1000 मूर्ति है एक ही मंदिर में बुद्ध की। यहां तक कि ये जो शब्द है बुद्ध, वो भी कहां से निकला, बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध की मूर्तियां उधर पहुंची मिडल ईस्ट में, ईरान, अरब देशों में, और वहां एक नया शब्द निकला बुद्ध, बुत अर्थात मूर्ति, बुत परस्त, बुत पूजा, मतलब यहां तक उसकी मूर्तियां बनाई। तो ये दो नंबर के लोग, दो कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी थी। तो जो बुद्ध जैसी अवस्था को पाते हैं उन्हें कहा जाता है बोधिसत्व। तो ऐसे ही बोधिसत्व की एक कहानी है कि वो किसी जन्म में खरगोश था और उसके चार साथी थे, तीन साथी थे, एक बंदर, दूसरा सियार और तीसरा उसको इंग्लिश में ओटर कहते हैं, वो एक जल में रहने वाला प्राणी है जो मछलियों को खाता है। हाँ, उद्वेला, उद्वेला, उर्द्वविला, विलाप, तो वो प्राणी होता है उर्द्वविला, तो उर्द्वविला, वैसे चार रहते हैं। तो दिखाया है कि देवताओं में से एक देवता आता है और वो जो बोधिसत्व, वो जो खरगोश होता है, बहुत दानवीर होता है, बहुत ज्ञानी होता है, सबको बांटते रहता है। तो वो देवता आता है और सोचता है मैं इनकी परीक्षा लूं। तो सबसे पहले वो जाता है बंदर के पास और कहता है बंदर को, ब्राह्मण वेश धारण करता है और कहता है कि मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ दोगे? बंदर अभी अभी फल तोड़ के लाया था, अभी खाने ही वाला था, पर उनके जो गुरु थे खरगोश, उन्होंने सिखाया था पहले ही धर्म की बातें, नीति की बातें। तो कहता है मैं तो वैसे भूखा भी, बहुत भूख लगी है, पर आपको, आप मांग रहे हो तो ये लो, उसको दे देता। सीआर के पास जाता है, सीआर ने अभी अभी वो चिपकली पकड़ी थी, खाने ही वाला था, तो ये मांगता है। वो कहता है चलो मैं आपको दे देता हूं। वो ओटर के पास जाते हैं तो ओटर को पूछते हैं कि, तो ओटर ने अभी अभी मछली पकड़ी थी, वो भी दे देता है, तीनों दे देते। फिर ये ब्राह्मण उसके पास जाता है, खरगोश के पास। वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ है खाने के लिए? खरगोश यहां वहां देखता है, आज उसको कुछ भी नहीं मिला था, केवल घास थी हरी। तो वो उसको कहता है कि आप एक काम कर सकते हो, थोड़ी सी आग जला दोगे यहां, थोड़ी सी सूखी घास इकट्ठा करके? तो वो ब्राह्मण सूखी घास इकट्ठा करता है, आग जलाता है, और वो खरगोश ये बोलते बोलते आग में कूद जाता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं और मुझे खा लेना। और वो कूद जाता है उस आग में। उस ब्राह्मण को धक्का लगता है, वो एक्चुअली देवता होता है, और फिर उसको वो बचा लेता है। तो दिखाया है सेवा भाव, इतना सेवा भाव, इस हद तक सेवा भाव कि स्वयं के लिए कुछ भी नहीं, बाबा ने कहा निस्वार्थ सेवा, सच्चे दिल से की हुई सेवा कहां तक पहुंचती है? दिलाराम तक पहुंचती है, जहां मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जो कुछ करूं सब कुछ सबके लिए, दूसरों के लिए, तेरे भाने सर्व का भला, सबका जिससे भला हो। तो सेवा, तो डबल विदेशियों से मुलाकात, दो ग्रुप से उसमें। सबसे पहला ग्रुप क्या कहा बाबा ने, यहां तीन बातें कही है। सबसे पहले भाग्य की बात कही है। मधुबन कौन सी भूमि है? मधुबन कौन सी भूमि है? कली तो चली मुरली। भाग्य विधाता की भूमि है। मधुबन कौन सी भूमि है? शांति की भूमि है। मधुबन कौन सी भूमि है? भाग्य की लकीर खींचने की भूमि है। तो तुम सब कहां आए हो? भाग्य विधाता की भूमि पर आए हो, कितने भाग्यवान हो। बाबा ने भाग्य की स्मृति दिलाई कि हम आत्माएं कितनी भाग्यशाली है, कितने भाग्यवान है कि तुम इस भूमि तक पहुंच गए। जरूर तुम्हारा कोई पुण्य प्रताप है, जरूर तुम्हारा कोई पुण्य किसी और जन्म का उदय हुआ है, तभी तो यहां पहुंचे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। तो यह भूमि कौन सी है? शांति की भूमि। यह भूमि कौन सी है? भाग्य विधाता की भूमि। यह भूमि कौन सी है? भाग्य की लकीर खींचने की भूमि। यहां तुम आए हो। दूसरी बात, इच्छाओं के लिए कहा। क्या कहा इच्छाओं के लिए? इच्छाएं क्या है विठल भाई? इच्छाएं क्या है? परछाई है। इच्छा क्या है? परछाई है। जितना इच्छाओं के पीछे भागो, इच्छाएं और भागती है, और भागती है, और भागती है। एक इच्छा पूरी करो, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, दूसरी को पूरी करो, तीसरी खड़ी हो जाती है, कभी रुकती ही नहीं। जैसे सागर की तरंगे, लहरें आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। क्या करे इन इच्छाओं का? डिजायर मैनेजमेंट रुकती नहीं है, बेचैन करके रखती है इच्छाएं। जब तक पूरी नहीं हो जाती है व्यक्ति बेचैन रहता है, और एक बार पूरी हो गई कि फिर तुरंत दूसरी दिखाई देती है। जैसे इसके पहले भी बताया था, वो एक व्यक्ति जो कामचोर था, जिसको बिल्कुल काम नहीं करना था, उसने एक ऐसा काम ढूंढा कि जिसमें केवल सोना था। भैंसों का, 100 भैंसे थी तबेले में, और रात में उनकी खाली निगरानी रखनी थी बस, और सब लॉक था, तो कहीं भागने का कोई अवसर नहीं था। पर खाली मालिक ने इतने कहा था, तुम तब सो जाना जब सारी भैंसे सो जाए ना, तुम भी सो जाना। तो उसने कहा कितना आसान काम है, भैंसे तो अभी ऑलमोस्ट 98 सो गई, दो बची है, खड़ी है, थोड़ी देर में वो भी सो जाएंगी, ये एक बार सो गई तो मैं सो जाऊंगा, पूरी रात आराम से निकल जाएगी और पैसे के पैसे भी मिल जाएंगे। तो वो रुकता है कि ये दो भैंसे कब बैठती है, सोती है, तो दो भैंसे बैठती है, दूसरी दो खड़ी हो जाती है। फिर सोचता है अभी ये एक बार सो गई तो सो जाऊंगा, वो दो बैठती है और दो खड़ी हो जाती है, पूरी रात उसमें गुजर जाती है। दो इच्छाएं कम होती है, पूरी हो जाती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, इच्छाओं का महासागर है, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं, नदियां लहरें आती ही रहती है, हिलोरे लेती ही रहती है। ये तो बाबा ने कहा इच्छा कैसी है, ये परछाई की तरह है, इनके पीछे नहीं जाओ, क्या करो फिर, पीठ मोड़ दो। तो इच्छा क्या करेगी, तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, जैसे कोई तितली, तितली के पीछे भागो, क्या होता है, तितली और भागती और भागती और भागती, भागना बंद कर दो, एक जगह बैठ जाओ, यहां आके बैठ जाती है चुपचाप, जितना जिसके पीछे भागो वो और भागता है। इसके लिए विधि थोड़ी उल्टी है, भागना बंद कर दो तो वो चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आने लगेगी। तो बाबा ने कहा ये जो सांसारिक प्राप्तियों की इच्छाएं है ये बहुत भटकाती है, ये कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो वो कर लो और जीवन चला जाता है, पर मिलता हाथ में कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति यही सोचता है ना, बस अब थोड़ा सा बस ये मिल जाए ना, उसके बाद में फिर आध्यात्मिक जीवन चालू करेंगे, पर यहां पहुंचने के बाद फिर सोचते ये थोड़ा सा, पहले तो बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा आ जाए उसके बाद में तुझे याद करेंगे, बच्चा आता है फिर सोचते इसकी थोड़ी पढ़ाई लिखाई, अभी तो आया है थोड़ी तो इसकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, पढ़ाई लिखाई पूरी होती कहते हैं अभी तो ये कॉलेज जाएगा, फिर तो अभी इसकी शादी भी करनी है, फिर शादी भी हो गई अभी तो आओ, अभी पोते का मुंह भी देखना है, फिर पोते की शादी भी देखनी है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाने की पारी आ जाती है, मरणासन्न हो जाता है व्यक्ति, परंतु वो मोह छूटता नहीं है, उसी मोह में उसी दर्द में शरीर को छोड़ता है, उन्हीं इच्छाओं के साथ शरीर को छोड़ता है, जो जीवन भर नहीं छोड़ सका वहां क्या छोड़ेगा मरणासन्न होकर। इसके लिए इच्छाओं से मुक्ति की विधि क्या है, हाँ उसकी विधि क्या है, इच्छाओं की व्यर्थता को समझना, विधि क्या है, व्यर्थता, क्या मिलेगा, फ्यूटिलिटी, व्यर्थ है ये, इससे क्या मिलने वाला है, चलो आज ये इच्छा हो रही है कि ये मिल जाए, उसको देख लो कि वो मिल गया आगे क्या, वो मिलने के बाद क्या, जैसे सिकंदर को कोई भारत का सन्यासी कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो, वो कहते हैं मैंने आधी दुनिया जीत ली, आधी बाकी है, वो पूछता है तब क्या करोगे जब पूरी दुनिया जीत लोगे, सिकंदर सोच में पड़ जाता है तब क्या करूं, अभी तो आधी जीती है, आधा एशिया जीता है, जब पूरा जीत लूंगा आगे क्या, दुखी हो जाता है ये सोचकर, फिर तो कुछ जीतने को बचता नहीं है, फिर आगे क्या करूंगा। तो इच्छाओं की व्यर्थता को समझना है, इच्छाओं को दबाना नहीं है, आई इच्छा ठीक है आने दो, बहुत अच्छा आई ना, पता तो चला ये अभी है हमारे अंदर, मियां मिठू बनने से अच्छा तो ये अच्छा है कि ठीक है, एक तो ये कहना हमारी अभी कोई इच्छा बाकी नहीं है, सारी संसारिक इच्छा समाप्त हो गई है, हम महान तपस्वी योगी बन गए, एक ऐसा सोचना है, यह भी ठीक है, पर इच्छा इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, जन्म जन्म की साथी है, जन्म जन्म की भोग की इच्छा है, इसलिए व्यक्ति दोनों चीजें एक साथ भोगना चाहता है, एक ही कप में उसको भोग भी चाहिए और योग भी चाहिए। निखिलेश भाई एक कप बनाना, कप ऐसा नहीं होता है, कैसे होता है? एक कप में भोग भी चाहिए और योग भी चाहिए, नहीं मिल सकता। अमृत और जहर, राम और काम, नहीं हो सकता है। एक बार में एक ही मिल सकता है। ईसा मसीह अपने शिष्यों को कहता है कि तुम दो मालिकों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। एक साथ दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे तो क्या हाल होगा? वो कहेगा मेरे पास आओ, वो कहेगा मेरे पास आओ, वो कहता है ये थोड़ा चाय लेके आना, वो कहता है चाय नहीं पहले टोली इधर लाओ। तुम कहां चले गए थे? उसके पास किसने भेजा तुमको? कितनी मुश्किल हो जाएगी दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स अगर हो जाए किसी के, तो इधर जाएगा तो वो खींचेगा, उधर जाएगा तो वो खींचेगा। सेवादारी की खिचड़ी उसी तरह, एक तरफ राम एक तरफ काम, एक तरफ बाप एक तरफ बात, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात बाबा ने कही भाग्य, दूसरी बात कही इच्छाएं, इच्छाओं के स्वभाव को समझना है। इच्छा आ गई दबाना नहीं उसको, दबाएंगे तो वो दबी हुई रहेगी और फिर एक दिन प्रेशर कुकर में जैसा प्रेशर बनता है वैसा प्रेशर उत्पन्न होगा और धड़ाम से सीटी बजेगी जोर से। इच्छाएं दबा के रखी थी एंजॉयमेंट की और फिर अवसर की तलाश है बस, उसे बहुत मौज मस्ती करनी थी, बस अवसर की तलाश थी। ये योगी जीवन ने सारी इच्छाओं को दबा दिया और जैसे ही अवसर आया सब बाहर। आज के वरदान में है आतिशबाजी, कौन सी आतिशबाजी करो? उड़ती कला की बाजी करो। संसार वाले वो आतिशबाजी करते हैं जिसमें कितना पैसा खर्च होता है। किसी ने बहुत अच्छा मैसेज भेजा कि धरती के पास अपनी समस्याएं बहुत है, उसमें इजाफा मत करो अब क्रैकर्स के द्वारा। धरती अर्थ हैज मेनी प्रॉब्लम्स, डोंट ऐड क्रैकर्स टू इट। उसकी अपनी बहुत समस्या है। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प की तीली से उड़ती कला की आतिशबाजी करो। ये है आतिशबाजी, आतिश इश्क। तो दूसरी बात है इच्छा है, तीसरा है त्याग। छोटा सा त्याग, छोटे समय के लिए त्याग बहुत बड़ा भाग्य बना देगा। और हरेक को देखना है कि छोटा सा भी मैं त्याग कर देता हूं तो बहुत बड़ा भाग्य बनने वाला है। छोटी सी चीज का त्याग, इतना सा त्याग और भाग्य इतना बड़ा। और यहां बाबा ने खुशी की बात कही, खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो ये फर्स्ट ग्रुप था। दूसरा ग्रुप सेवा के विषय में, क्या कहा सेवा के लिए? जो शुरुआत में कहा दिल से सेवा करो, दिखावे के लिए नहीं करो। जो दिल से करते हैं और अथॉरिटी के बोल होते हैं वो दिल को छूते हैं, बाप दादा के दिल तक पहुंचते हैं दिल का आवाज। और स्टेज के लिए वेट नहीं करो, जो स्टेज है उसी में सेवा करो, जैसी स्टेज है उसी में सेवा करो। तो सेवा करते करते ही सेवा स्टेज बन जाएगी, दूसरों के कल्याण में ही सौ उन्नति समाई हुई है। दोनों भी बातें, सौ उन्नति में विश्व कल्याण समाया है, विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया है, दोनों है। तो यहां वो एक बात कही है। उसके बाद में अगर सेवाओं में विघ्न आ जाए तो क्या करो? सेवा करते करते विघ्न आ गया तो क्या समझो? विघ्नों क्या है? ये उन्नति का साधन है, आगे बढ़ने का साधन है। और क्या है? और क्या है? हा? क्या है? कागज का शेर। किसी मुरली में बाबा ने कहा था कागज का पहाड़, तो चाहे कागज का पहाड़ या कागज का शेर, कुछ भी कहो। पेपर टाइगर है, झूठ मूठ का, डराने वाला है, कुछ भी नहीं पर डरा देता है। और सेवाओं में विघ्न तो आएंगे, जितने ज्यादा विघ्न उतनी और सेवाओं में उन्नति होगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा जिम्मेवारी है उसको और ज्यादा विघ्न आएंगे। सुनना किसको पड़ता है? उसको कि जिसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे ज्यादा सुनना किसको पड़ता है? जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको ज्यादा सुनना पड़ता है। जिनको जिनके पास कोई काम नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के भी बैठे हुए हैं। त्रयोपासना, तीन प्रकार की उपासना, खाना पीना और सोना, इस साधना में जो रत है उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। खाना पीना और सोना, त्रयोपासना, तीन प्रकार की महाउपासनाएं हैं। लोग तो कहते उन्हीं को है जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर दिन न्यू चैलेंजेस है, हर दिन विघ्न है, हर दिन बाधा है, उन्हीं के लिए बातें बनाई जाती है। उनके लिए थोड़ी ना बातें बनाई जाती है जिनका कुछ नहीं है। तो इसमें डरना नहीं। कोई बहुत वीआईपी कर दे कुछ, जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती कर दे तो कहां आएगा? सारे न्यूज चैनल, सारे न्यूज पेपर में आ जाए। और कोई सामान्य व्यक्ति कोई गलती कर दे उसकी तो कोई चर्चा भी नहीं करता। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना सुनना भी पड़ेगा। यही संसार का दस्तूर है। तो डरना नहीं है। बाबा ने कहा इसको क्या समझो? पेपर टाइगर समझो। और ये मुझे कुछ सिखाने आया है, अच्छा है आया। एक भाई है, यहां है या मधुबन में है या कहीं और सेंटर पे है, उसने अपना जो कमरा है उसमें बहुत सारी चीजें लिख के रखी है। वो सारी चीजें लिख के रखी है जो लोगों ने उससे कही है, जैसे किसी ने गाली दी है वो स्वर्ण अक्षरों में लिख के रखा है और रोज पढ़ता है। उसके इंचार्ज ने कभी उसको कहा कुछ वो भी लिख के रखा है। मतलब हर वो चीज जो टॉन्ट वाली है, कमेंट वाली है, गाली वाली है, दुख देने वाली है, और जिसको सुनते उसको हर्ट हुआ था, एकदम धक्का लगा था, उसका पूरा वो समर्पण जीवन जिसमें हिला था, वो सारी चीजें नोट करके रखी है। क्योंकि पहली बार सुना ना धक्का लगा तो अभी रोज रोज पढ़ता है ताकि सामान्य हो जाए वो उसका वो जो फोर्स था धक्के वाला वो थोड़ा कम हो जाए, तो पूरा लिख के रखा है। किसी ने फोटो भेजा था उसके कमरे का, और वो जो उसका कबोर्ड है वहां वो सारी चीजें लिखी हुई है, एक एक चीज लिखी हुई है। जैसे किसी ने कहा तेरी तुम्हारी तो आदत ही है लेट आने की, वो लिख के रख दिया। फिर किसी ने कहा तुम यहां सेवा करने आए या यश करने आए हो, वो भी लिख के रखा। हर चीज लिख के रखी जो लोगों ने एकदम कही, उसको उसने गलत नहीं लिया, सही ढंग से लिया। हाँ है ऐसा ही है, अपने दिल को समझाए जैसे कि हाँ कितना भी अच्छा करो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कहना भी चाहिए। तो जो जली कटी लोग सुनाते हैं उसको थोड़ा संभाल के रखना, काम आएगा वो, माजून है वो आत्मा के लिए। चौप चीनी, लोगों के कमेंट्स, लोगों की खराब खराब बातें, लोगों का छिड़का हुआ नमक तो डिब्बी में रखना, दिल की जो घाव पे छिड़का था ना काम आएगा। जो घाव पे मिर्च डाली थी और रगड़ा था वो मिर्च भी बहुत काम आएगी सब्जी के लिए, ठेसा बनाने के लिए। तो दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है। ये सफर बहुत कठिन है, ना उदास हो मेरे हम सफर। तो कहने का भाव, सेवाएं चालू रखनी है, सेवाओं को रोकना नहीं है, स्टेज के लिए रुकना नहीं है, स्टेज अपने आप आती जाएगी। स्टेज आ जाए फिर सेवा करूं, अभी उदास लग रहा है, अभी मन नहीं लग रहा है, ज्ञान में योग में कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही टाइम पे ज्यादा सेवा करनी है। और कौन सी सेवा करनी है ऐसे टाइम पे? स्थूल सेवा, जब कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है, ना मुरली पढ़ने की इच्छा है। कई ब्राह्मणों की ऐसी अवस्था है कि मुरली में रस पूरा जीरो हो गया है। कई ब्राह्मणों की ऐसी अवस्था है कि मुरली उनको बोझ सा लगता है। सेंटर रोज जाते हैं परंतु कहते हैं वही वही बातें सुन सुन के कुछ नवीनता नहीं लगती है। सुन से जैसा हो गया है, दिमाग ही सुन हो गया। दिन रात सेवा करते परंतु रुचि जो होनी चाहिए वो नहीं है। वही 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 सेम हो गया है। तकिया कलाम, सेम जीवन, वही वही सुन रहे, वही वही बातें, वही वही सब कुछ। निरसता है, विरसता है जीवन में। कोई भी नयापन नहीं है, बेस्वाद। कोई नए जायके की आवश्यकता है इन बेस्वादियों में? टेस्ट ही नहीं है। जीवन निरस हो गया है, ब्राह्मण जीवन। पर किसी से कह नहीं सकते, कहेंगे तो लोग कहेंगे अच्छा तुमको माया ने खा लिया, और हमारी जो इमेज है योगी वाली उसका क्या होगा? पर अंदर से उदास और दुखी है। सेंटर पर जाते इसलिए है मुरली सुनने, ताकि कोई ब्राह्मण परिवार का यह ना कह दे कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुमको माया ने खा लिया। इस डर से चिंतन की कमी, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ऐसा हो तो सबसे पहले क्या करना है? बाबा ने कहा जाके सेवा करना चालू करो। और जरूरी नहीं है केवल ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, किसी की भी सेवा करो। जैसे एक विदेश की महिला, उसकी कार खराब हो गई और वो खड़ी हो गई और देख रही है कि कोई आए और मदद करे। कितनों को बुलाया, कोई नहीं आया। वहां से एक उससे भी बढ़िया सी कार आती है, मर्सिडीज, और वहां से एक व्यक्ति उतरता है और वो पूछता है क्या तुमको मेरी कुछ जरूरत है? वो कहती है मेरी कार खराब हो गई। तो वो सीधा फिर उसकी कार के अंदर घुसता है नीचे और ठीक ठाक करता है। और वो कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कौन हो? वो कहता है मैं ब्रायन एंडरसन। और वो चला जाता है। और वो उसको कहती है कि मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं? वो कहता है बस एक ही बात करना, जो मदद मैंने तुम्हारी की, ये जो साइकिल है लव वाली, हेल्प वाली, इसको रोकना मत। आज सारे दिन भर तुम भी किसी की मदद कर देना। और वो चला जाता है। ब्रायन एंडरसन अमेरिका का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक लेखक है। तो वो चला जाता है। तो वो लेडी फिर गाड़ी चार्ज करते एक रेस्टोरेंट में जाती है। रेस्टोरेंट में देखती है वहां पर एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, और वो इतनी हालत में भी इतनी वहां पर वेटर वेटरेस का काम कर रही है। तो वो उससे थोड़ी सी बात करती है और फिर उसको लगता है मैं इसकी मदद करूं, क्योंकि मेरी भी मदद किसी ने की थी। तो वो उसकी मदद करती है, उस वेटरेस की। जितना पैसा देना होता है उससे ज्यादा पैसा एज अ टिप नीचे रख देती है और चली जाती है। वो वेटरेस जब देखती है अरे इसने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, और वो जाते जाते इसको भी कह जाती है कि जैसे मैंने तुमसे अच्छे से बात की और तुम्हारी मैं मदद जो भी की, वैसी तुम किसी और की करना। वो अपने घर जाती है। उसका पति बहुत परेशान होता है, अभी बच्चा आने वाला है, पैसे नहीं है, ये वो। तो वो उसके साथ वैसे ही बात करती है। मतलब इसमें ऐसा दिखाया है कि एक ने मदद का सर्कल चालू किया, साइकिल, वो आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, क्योंकि पहले वाले ने कहा था कि यही तुम साइकिल जारी रखना, इसको तोड़ना मत। और वो दिखा है एक 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 जारी रहता है, और हर एक के नाम पर एक व्यक्ति का नाम आता है, एंडरसन, एंडरसन, आई लव यू एंडरसन। हर एक दूसरे की मदद करता है और फिर कहता है कि मैं, वो एंडरसन ने मेरी मदद की थी ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तो दिखाया है कि कैसे वो पूरा साइकिल पूरे शहर में फैल जाता है। क्यों कर रहे हो तुम मदद? क्योंकि मेरी किसी ने मदद की। तो सेवा, ये सेवा का साइकिल है, सर्कल है एक, इसको फैलाते जाना है। जैसे वो दीपक, दीपमाला, उसकी आवली जैसी है, दीपावली, इसकी आवली, इसकी लाइन, इसकी रो मदद की। जो किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, अब हम किसी और के साथ अच्छा करेंगे। किसी ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, अब हम किसी और को अच्छा ज्ञान सुनाएंगे, ताकि ये ज्ञान का, गीत में सुना ना, प्रचार हो, प्रसार हो, प्रचार दे, प्रसार दे, विज्ञान का प्रचार दे, प्रसार दे। तो ये सर्कल, ये साइकिल फैलानी है। तो तो ये मदद की साइकिल फैलानी है। तो बाबा ने मुरली में क्या क्या कहा, सबसे पहले भाग्य की बात, इच्छा की बात, फिर त्याग की बात, उसके बाद में सेवा की बात, उसके बाद में दिल से सेवा करने की बात, और यदि विघ्न आ जाए तो उसको पेपर टाइगर समझो, और विघ्न आ जाए तो उसको उन्नति का साधन समझो, आगे बढ़ाने के लिए आइए समझ कर आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति।
प्रेम की अखंडता की चाहती